ये आ रहा है आप उसमें भागवत अध्यापन
टेलीग्राम पे आना चाहिए। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, मेरे पीछे बोलिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जो भक्त पढ़ सकते हैं और पुस्तकें उपलब्ध हैं आप ले सकते हैं, माता जी को दे दीजिए। श्रीमद् भागवतम को की नित्य सेवा से क्या लाभ होगा यह है श्लोक में बताया जा रहा है। श्लोक बड़ा स्पष्ट है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। पिछले श्लोक में हमने सीखा था कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने की इच्छा को जागृत कर लिया है, सुनता है भगवान के बारे में, तो वह उसके हृदय से भगवान अंदर रहते हैं, भगवान स्वयं ही उसके हृदय को साफ कर देते हैं। किन वस्तुओं को साफ कर देते हैं, कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा आप बढ़ रही है आगे। तो इसमें बोल रहे हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी अभद्र हैं हृदय में, काम क्रोध लोभ मद इत्यादि, वह सब प्रायः नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से नहीं, प्रायः नष्ट हो जाते हैं। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा से। और वह कैसी सेवा होनी चाहिए? नित्य, रोज। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं और आप जानते हो जब मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब करते हो तो प्रायः मेडिसिन को रोज लेना होता है, दो टाइम सुबह, दो टाइम तीन में, ऐसे करके लेना होता है। तो यहां पे हमारे लिए नित्यम का अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं नियमित रूप से। नियमित का अर्थ होता है कम से कम दिन में एक बार एक श्लोक तो कम से कम पढ़ना सुनना होता है, इतना तो कम से कम। अब वैसे जो महान भक्त है उनके लिए नित्य का अर्थ हो गया कि हमेशा ही पढ़ना चाहिए, तो वह तो बद्धात्मा के लिए संभव नहीं, इतना रुचि बद्धात्मा को होती नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम एक श्लोक तो जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और इसी की व्यवस्था प्रभुपाद जी ने अपने मंदिरों में की है कि एक श्लोक कम से कम रोज व्यक्ति पढ़े भागवत सेवा। तो भागवत सेवा का अर्थ क्या है? भागवत प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बता रहे हैं, आचार्यगण समझाते हैं इसको, श्रीमद् भागवत यानी शास्त्र और भागवत यानी भक्त जो उस भागवत के अनुसार अपना जीवन जी रहा है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि श्रीमद् भागवतम और भक्त भागवत में श्रेष्ठ कौन है, तो प्रभुपाद जी बोले कि भागवत भक्त भागवत, क्योंकि आपका कान भी उमेट सकता है, मतलब अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो डांटेगा भी, भाई मंगल आरती के लिए क्यों नहीं उठ रहे, भागवत हो ना डांटेगी मंगल आरती के लिए उठ रहे। तो ये एक प्रसंग में प्रभुपाद इस प्रकार से बोल रहे थे, लेकिन दोनों ही प्रबल साधन है इनकी सेवा करके। अब सेवा का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। महाराज भट्ट बता रहे थे कि ऐसा नहीं है भागवत रख दी, उसकी आरती कर दी, फूल चढ़ा दी, अब उसकी सेवा हो गई। हाँ, परिक्रमा भी कर लेते हैं कुछ लोग, कभी कभी लोग प्रवचन में नहीं आते, बाद में जब भागवत की आरती होती तभी आते हैं बस। तो इस प्रकार से एक कोई कर्मकांड की तरह नहीं रखना चाहिए। भागवत की सेवा का अर्थ है उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसमें मनन करना, इस प्रकार से श्रीमद् शास्त्र की सेवा होती है। और भक्त की सेवा कैसे होती है? दो शब्द हैं, प्रसंग और परिचर्या। क्या शब्द हैं? प्रसंग और परिचर्या। परिचर्या का अर्थ है उनकी कुछ शरीर की सेवा करना, कुछ खाने के लिए देना, कुछ जल देना, या और जो भी कोई सेवा होता है, कभी कपड़े धोता है वह भक्तों के। और प्रसंग मतलब होता है कथा सुनना। ये दोनों चीजों के जब होता है तो इस प्रकार से सेवा भक्तों की होती है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, आज ही प्रवचन हो रहा था, 9:10 थे, महाराज जी बड़े भाव में बता रहे थे, एक भक्त माला लेके आ गए बीच में टालने के लिए, महाराज कह रहे रुको 10 मिनट के बाद, यानी कथा के बाद माला डालना। तो कभी कभी समझ नहीं पाता है व्यक्ति, महाराज भी कोई बार प्रवचन में करते हैं, अरे कथा के बीच में माला मत डालिए। तो लोग सोचते हैं अरे महाराज जी की माला पड़ी हुई थी, छोटी माला थी, अभी बड़ी माला पहना दो, उससे वो जो है उनको दुख हो जाता है, कथा में व्यवधान हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सेवा का उद्देश्य है जो सेव्य है उसको संतुष्ट करना। तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए कब क्या करना है कब नहीं करना है। तो कब परिचर्या करनी है वह भी समझ में आना चाहिए और कब प्रसंग करना है वह भी समझ में आना चाहिए, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। ठीक, भागवत सेवा। उसके बाद कह रहे हैं क्या है, भगवती उत्तमा श्लोके, उन भगवान में जो उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक मतलब जिनकी दिव्य श्लोकों के द्वारा स्थिति होती है उनमें हो जाती है भवती भक्तिर भवती नष्टिकी, उनमें नष्टिकी भक्ति हो जाती है। नष्टिकी मतलब विक्षेप अभावात, जिसमें विक्षेप नहीं होता, मन कहीं और नहीं जाता। ऐसा नहीं कि अब बुखार आ गया, कुछ कठिनाई आ गई, कुछ परेशानी आ गई तो फिर अब हम भक्ति छोड़ देंगे। और ऐसा हमने कई बार बहुत सारे भक्तों को देखेंगे कि थोड़ा सा कठिनाई आ गई और भक्ति छोड़ दी, कठिनाई भी नहीं आई, थोड़ा भोग उपस्थित हो गए तो भक्ति छोड़ दी। तो इस प्रकार की विक्षेप अभावात, अभाव मतलब समझते हैं कुछ वस्तु का अभाव नहीं होना, तो विक्षेप का अभाव मतलब अब ये मन उधर उधर भागता नहीं है, मन को भगवान में लगाना आसान होता है, ये निष्ठा का स्तर है। मैं आज इस पर प्रसाद देते समय विचार कर रहा था कि देखिए भक्ति की सारी प्रगति हृदय की प्रगति है, समझ में आ रहा है। भक्ति में जो भी हम प्रगति कर रहे हैं वो बाह्य रूप से कोई प्रगति का महत्व नहीं है, सारी प्रगति सारा ट्रीटमेंट जो है वो हृदय का है। तो अगर भक्त सिंसियर यानी कि सिंसियर क्या क्या कहेंगे, ईमानदारी से भक्ति नहीं कर रहा है तो वह इस प्रगति का अनुभव नहीं करेगा। तो सारी ट्रेनिंग किसी भक्त की हो यही है कि वह ईमानदार हो, अगर वो जप कर रहा है तो वो जप अच्छे से करे, अगर वो भागवत पढ़ रहा है तो स्वयं नियम बना करके भागवत पढ़े सुने, इच्छा हो उसकी प्रगति करने की। बहुत ही गंभीर बात है, समझ में आ रही मेरी बातें आपको। बाहर बाहर से दिखाने वाला तो जो कुछ हम कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय की प्रगति होनी चाहिए। और यहाँ पे हृदय की शुद्धिकरण, हृदय के ट्रीटमेंट की ही बात हो रही है। कैसा है निष्ठा का अर्थ क्या है, अविचल अटल, मन भगवान में आसानी से लगता है। और वो क्यों लगता है वो आगे हम आगे के श्लोकों में बताएंगे कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि क्या कारण है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, तो वह चीज तो अभी अगले श्लोक में आएगी। यहां हमने अभी तक क्या सीखा, प्रायः जो अभद्र हैं काम इत्यादि जो मल है वह नष्ट हो जाता है श्रीमद् भागवतम की नित्य सेवा करने से। और भगवान भगवान श्री कृष्ण में जो जिनका गुणगान दिव्य स्तुतियों में होता है उनमें निष्ठा हो जाती है। अनुवाद देखिए, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो मेरे ख्याल से अब अनुवाद तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, कुछ मैं पहले शेरा स्वामी की टीका से बोलूंगा फिर उसके बाद यहां पर बोलेंगे। तो वो बात बोल रहे हैं कि ततश्च नष्ट प्रायेश्व इति, कि भगवान की जब कथा सुनने की इच्छा उसकी जागृत हो गई तो वह, हमने इसको भी बताया था कि पहले इच्छा नहीं होती है लेकिन व्यक्ति थोड़ा सोचता है, तीर्थ भ्रमण करेगा या भक्तों का संग करता है, थोड़ा थोड़ा सुनता है तो फिर वहां से उसकी कथा सुनने की इच्छा जागृत होने लगती है। अब ऐसा भक्त जिसने इच्छा जागृत कर ली है उसके हृदय को भगवान साफ करना चालू करते हैं, तो अब क्या होने लगेगा, अब वह नित्य भागवत सेवा करेगा, रोज भगवान को भागवतम को पढ़ने का इच्छा होगी। जब इस प्रकार से रोज पढ़ेगा तो भगवान उसके हृदय को साफ करेंगे। और वो कह रहे हैं कि प्राय शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सारे अभद्रों का नाश तो पूर्व ज्ञान प्राप्त करने पर होगा। इसी को आगे आचार्यगण और तरह से बताएंगे कि भाव के स्तर पे ही हम पूरी तरह से निर्गुण होते हैं, लेकिन निष्ठा के स्तर पे भी जो कठिनाई है, प्रतिबंधक चीजें हैं, रजोगुण तमोगुण है, उनका प्रभाव प्रायः कम हो जाता है। और जैसे बुखार 104 था तो अब 99.5 आ गया, तो कितना प्रायः समाप्त हो गया ना, पूरी तरह से तो नहीं हुआ, कितना डिग्री होना चाहिए, 98.4 होना चाहिए, तो 99 पे आ गया तो मतलब प्रायः सही हो गया, ऐसे बोला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रायः समाप्त हो गया, 75% ऐसे बोला जाता है, 75% अभद्र है वो कम हो गए, इस प्रकार से। और यही बात बोल रहे हैं, नैष्टिकी अर्थात निश्चला विक्षेप विक्षेप का अभावात, मतलब ऐसी भक्ति जिसमें विक्षेप नहीं होता, मन को भगवान में लगाने में कठिनाई नहीं होती। तो बड़ा इजी है, समझ में आ रहा है। ये बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भक्तों की सेवा करने से और श्रीमद् भागवतम की सेवा करने से जो नाम अपराध हैं वो प्रमुखतः नष्ट हो जाते। अभद्रेशु का अर्थ बता रहे हैं जो नाम अपराध हैं, जिसकी वजह से नाम में रुचि नहीं होती। पिछली बार भी हम बात कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से हमें भगवान के नाम में रुचि होती है, तो भागवतम का श्रवण करने से प्राय नाम अपराध नष्ट हो जाते हैं। उसके बहुत उस पर बहुत कुछ विचार करने वाली बात है कि नाम अपराध करता क्यों है, क्योंकि उसे भगवान के नाम के बारे में पता नहीं है। एक बात तो यह है, तत्व पता नहीं है। कभी कह रहे शिवजी का नाम लो, हरे कृष्णा करो, कोई एक ही बात है, ये भी एक अपराध होता है। वैसे आप लोग पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो नाम अपराध जो है कमजोर पड़ते हैं, जो कमजोर पड़ते हैं तो भगवान के नाम में भी रुचि प्राप्त होती है। तो ये एक अर्थ ले रहे हैं, अभद्र नष्ट होने का मतलब है नाम अपराधों का जो प्रभाव हमारे चित्त पे है वह कम होता है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से और भगवान के भक्तों की सेवा करने से। और विवाद ये कह रहे हैं कि ये जो अपराध हैं इनका प्रभाव या संस्कार भाव स्तर पे रहता तक जाता है, तो फिर भी प्राय प्राय जो आपका निष्ठा के स्तर पे ये सब जो अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि भाव स्तर पे संस्कार रहते हैं, प्रेम जब प्रेमावस्था प्राप्त हो जाती है तब कोई अपराध का कोई संस्कार नहीं रहता। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रगति व्यक्ति करता जाता है लेकिन वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, उसका प्रभाव कम होता जाता है, ये बात है। ठीक है, अब हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य यहां पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। तो स्पष्ट है यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। एक बात आप इस पे आप सीख सकते हैं और सभी भक्त अनुभव करते होंगे कि भक्ति में बाहर से कोई खास बाधा नहीं आती। आपको लगता है कि बाधा बाहर से कहीं है? विचार कीजिए तो बाधा केवल अगर हृदय में ही है, अंदर से ही है, बाहर से कोई बाधा नहीं है। वे नाम में रुचि नहीं है तो कोई बाहर से रोक रहा है नाम में रुचि से? अगर नाम में रुचि है या नहीं है तो वो तो भगवान हृदय की गंदगी का कारण है। कैसे सहमत हो रहे हैं आप लोग या कुछ आपको लगता है कि कहीं कोई कठिनाई है? कोई भी व्यक्ति अगर भगवत आप देख लो प्रहलाद महाराज को, हिरणक हम तो यहाँ छोटे से व्यक्ति से थोड़ा परेशान हो रहे हैं, है ना, वहां हिरणकश्यप पूरा है, दैत्य है, वह भी नहीं रोक पाया प्रहलाद महाराज को, है कि नहीं? अब उस हिरणकश्यप का तो प्रशासन ही हिरणकश्यप का है, आप किसके पास जाएंगे, सुनवाई कौन करेगा? और हमें देखो ना कोई तेल में डाल रहा है, गर्म तेल में, ऐसे कोई भी डाल नहीं रहा, तो उस जब उसको नहीं रोक सके, नहीं रोक पाए ना, तो भक्ति बाहर से रोकी नहीं जा सकती। प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस्कॉन कोई व्यक्ति बाहर से नहीं रोक सकता है, गड़बड़ भक्त अंदर ही कर सकते, वही अगर भक्ति ठीक से ना करे तो अलग बात है, अन्यथा भक्ति कोई किसी व्यवस्था में नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो अगर कोई कठिनाई आती है जो अवरोध है वह हृदय से ही है। एक बात और अच्छी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान की भक्त भक्ति करता रहे तो क्रमशः भगवान इन अवरोधों को तोड़ते हैं। चाहे हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, चाहे जप कर रहे हैं, चाहे भगवान की कोई भी भक्ति कर रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं कल से भक्ति करना चालू कि आज सारा कुछ हृदय मेरा साफ क्यों नहीं हो गया। भगवान धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं, धैर्य से भक्ति करते रहिए, निश्चित रूप से जिस दिन से पहले हमने हरि नाम करना चालू किया था उसी दिन से भगवान सफाई चालू कर दी, शुरू कर दिया, लेकिन धैर्य से करते रहना होगा। एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी कि जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को सुनने से भगवान हृदय में हमारी सफाई करते हैं, ऐसे ही भौतिक शब्द सुनने से उसका विपरीत प्रभाव भी होता है। भौतिक शब्द सुनने से हमारा हृदय गंदा हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं, ये सब कवर हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। कुछ चीजें हमने इसे सीखनी है। बहुत सिंपल सी बातें लगती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखनी है। एक कि अगर हम भागवत होना चाहते हैं तो हमारा जीवन ग्रंथ के अनुसार होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, बहुत बहुत सीधी सी बात है, लेकिन ग्रंथ में जो लिखा है उसको पढ़ेंगे तो लगेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत नीचे है। बताया गया ना कि मध्यम अधिकारी को कम से कम जो द्वेषी व्यक्ति है उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। तो अब जो थोड़ा बहुत एक द्वेषी व्यक्ति मिला है उसके प्रति क्या भावना आ रही है हृदय में, जरा चेक कीजिए, द्वेष की भावना आ रही है क्या? ये उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा करना ये शास्त्र का। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल आप देखिए, टेस्ट लिया कि भाई आपको कोई प्रणाम नहीं करने दे रहा है, ठीक है, वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। हमें भक्त को हमेशा ऐसे ही भावना रखना चाहिए। प्रभुपाद जी भी उस दिन हिंदी में एक लेक्चर में बता रहे थे कि हमें तो इतना कोई परेशान नहीं कर रहा कि हमें इसको सूली पे चढ़ा दे, ये कोई गर्म तेल में डाल दे। तो ये भागवत सुनने से हमें ये मालूम चलता रहता है कि भाई भक्तों का स्टैंडर्ड क्या रह चुका है, प्रहलाद महाराज किस स्तर पे सोच रहे हैं। उन्होंने केवल अपने पिता के लिए वर मांगा, सोचिए भगवान आपके सामने आ जाए और कह रहे बेटा तुम्हें जो वर चाहिए वो दे दो, तो इसके लिए वर मांग रहे हैं अपने पिता के लिए। तो ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज को ही करना है, ऐसा ही नहीं कि केवल जीसस क्राइस्ट को करना है। जितनी भी हमारी चेतना उसको, हमारी चेतना हमको शक्ति देती है, हमको भी उसी पथ पे चलना है। एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे कि अगर हम जो हमारे प्रति गलत बर्ताव करते हैं अगर हम उनको क्षमा नहीं करते हैं, तो ऐसा हुआ कि मान लीजिए किसी ने कोयला का अंगार आपके ऊपर फेंका, तो आप कोयला पकड़े हुए हैं, आप सोच रहे मैं इसके ऊपर फेंकूंगा और फेंक नहीं पा रहे, तो आपको ही जला रहा है, हमको ही जला रहा है। और जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति हमको सॉरी बोलेगा। तो अगर हम सॉरी बोलने की अपेक्षा कर रहे हैं कि तब उसको माफ करेंगे, तो हम जलते ही रहे ना। तो यह तो बाहर की दुनिया के लोग करते हैं कि सॉरी की अपेक्षा करते हैं, भाई क्षमा मांगेगा तब क्षमा करते हैं। तो आप जब देखेंगे कि ये ग्रंथ के अनुसार चलना बड़ा कठिन है, लेकिन जो भी है, जो व्यक्ति इस ग्रंथ के अनुसार चलता है, उस भक्त का संग प्राप्ति से शुद्धिकरण होता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी शिष्य क्या जानते थे, क्या भागवत पढ़ते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था, फिर भी प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करके कितने अच्छे भक्त वह बन गए। तो आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन से और अन्य भक्तों के भी जीवन में आप देख रहे हैं, भक्त संग प्राप्त करके लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि क्यों है, किसी को पता है? प्रत्यक्ष प्रतिनिधि इसलिए है क्योंकि जो भगवान उपदेश हमें देना चाहते हैं, जो शिक्षा देना चाहते हैं, वही भक्त देते हैं। मैंने समझाया था कई बार, आप लोग यहाँ पे यही चीज जो बाहर अनाउंसमेंट करने वाले हैं आते हैं और बोलते हैं कि फलानी तारीख को पोलियो ड्रॉप या कुछ पढ़ने वाले हैं, ये डीएम का आदेश है। तो डीएम आके अनाउंसमेंट कर रहा है कि पोलियो ड्रॉप दिलवा दीजिएगा, होता है ना सर प्राय अनाउंसमेंट करने के लिए। या पहले राजा लोग बोलते थे अपने जो ढोल पीटने वालों को बोलते थे, सुनो 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 गांव वालों सुनो, ये राजा का आदेश है। राजा आके नहीं बोल रहा है, लेकिन राजा की बात को वह वस्तुतः जैसी है वैसे प्रस्तुत कर रहा है, तो वह राजा का प्रतिनिधि कहलाता। उसी प्रकार से भक्त भगवान की बात को परिवर्तित नहीं करते हैं। इसको बंद कर सकते हैं दरवाजे को, ऐसा कुछ बहुत दिक्कत आई। चला जाएगा ये, अच्छा। ये बातें बहुत सीधी सीधी लगती हैं और बहुत आसान लगती हैं, लेकिन पूरे समाज में यही नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति व्यासासन पे बैठते हैं वो व्यासदेव के बिल्कुल विरुद्ध बोलते हैं। व्यासदेव बोल रहे हैं भगवान का सुंदर रूप है, और वह बोलते हैं भगवान तो निराकार है, तुम किसी को भी मानो। वो कहते हैं कृष्ण व्यासदेव कह रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान है, वो कहते हैं किसी को भी मान लो भगवान हो। ये बात आसान नहीं है। एक तो अपना जीवन भगवान के अनुसार चला रहे हैं, भागवत के अनुसार चला रहे हैं, और वह जो बोलते हैं वह भी भगवान के अनुसार ही बोलते हैं जो भगवान ने बोला है। ये इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि प्रायः जो प्रवक्ता है वो जानता है कि सामने वाले को तो कुछ पता नहीं, एक बात। और जब उसे कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो वह उसमें जोड़ करके प्रस्तुत कर देता है। और ये नहीं बोलता कि ये मेरा मत है, कभी कभी धड़ल्ले से बोल भी देते कि मेरा मत है। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? जो कुछ नहीं पता होता है तो ये नहीं बोलता कि मुझे नहीं पता है, तो सोचे अरे गुरु जी को पता नहीं ऐसा कैसे, और अपने से कुछ जोड़ करके वह प्रस्तुत कर देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे थे गुरु होना बड़ा आसान है, जो भगवान ने बोला है उसी बात को आप प्रस्तुत करिए, उससे हम स्वयं भी शुद्ध होंगे और सुनने वाले भी शुद्ध होंगे। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत, क्या लिखा हुआ है इसमें, अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु यह तथ्य है जिसकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। अब यहाँ पे जब कभी कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक भक्त को संशय आया कि जो माताएं आती हैं कुछ लोगों को पढ़ना नहीं आता है तो उनको इस भागवत चर्चा से क्या लाभ होगा। तो यही बात देखिए प्रभुपाद जी यहां बोल रहे हैं। इस कहानी को मैं थोड़ा सा बता, पहले पढ़ लेता हूं फिर कथा को थोड़ा बता देता हूं। दासी नारद जी के बारे में आप लोग सुना होगा, नारद मुनि। नारद जी अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी, दासी मतलब टहल का मतलब होता है सेवा करती थी, परिचर्या, और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर वह दासी पुत्र श्रील नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। मैं पूरा पढ़ता हूं फिर पूरा कहानी बताऊंगा इसकी। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है उतनी ही वह भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर होता जाता है। अतएव ग्रंथ भागवती कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। हम थोड़ा पॉइंट्स को चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट है। छोटा सा हम इसमें पॉइंट नारद जी के बारे में बताएंगे। पिछले वो कल्प में एक दासी के पुत्र थे और वह दासी महान भक्तों की सेवा करती थी, तो जब वह सेवा करती थी माँ तो बच्चा भी सेवा करता था, और उनकी इंद्रियां बड़ी संयमित थी, तो उन भक्ति वेदांतों ने भक्तों ने उन पर बड़ी कृपा करी और एक समय उनको अपना झूठन भी खाने को दिया। तो उनकी ये कह सकते हैं उनकी आज्ञा लेकर के उन्होंने स्वीकार किया। तो वहां बहुत अच्छा बात श्रीमद् भागवत में लिखा है, तद धर्म रुचि प्रजायते, जो उनका धर्म था उसमें नारद मुनि का रुचि हो गई। क्या धर्म था उनका? हर समय भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। समझ में आए? भक्त संघ का यह प्रत्यक्ष प्रभाव होना चाहिए कि हमारे हृदय में ये जरूर इच्छा जाए, मैं तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा हूं, देखो ये लोग कथा कीर्तन में लगे हैं और मैं भी ऐसा कथा कीर्तन करूं, कथा कीर्तन मैं भी लग पाऊं, कितना सुख मिलता है, मैं भी इस प्रकार से कथा कीर्तन में लगा रहूं। ये मैं आपको थ्योरी नहीं बोल रहा हूं। आज जैसे वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे तो इन भक्तों का संग प्राप्त करके ही मेरी इच्छा होती है, हो ही रही है, मैं कर रहा हूं कि मैं भी आचार्यों की टीका पढ़ता हूं या महाराज से सुना, तो लगता है हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी भगवान की सेवा में है, लेकिन लगता है मैनेजमेंट छोड़ के भागवत ही पढ़ना चाहिए। ये संघ का प्रभाव होता है। ये हो गया भक्तों का संघ। और भोगियों का संग करने से क्या होता है? अरे देखो कितना सुख है कि दारू पी रहा है, ये कर रहा है, हम भी जाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। एकदम संघ का प्रभाव, मतलब संघ से चढ़ता है रंग, अर्थात जैसा वो व्यक्ति है वैसा हम बनना चाहते। समझ में आ रही बात? तो ये भक्तों का प्रभाव क्या हुआ, नारद मुनि ने वो कथा सुनना बहुत अच्छा लगा, और फिर चार महीने के बाद, ये केवल चार महीने में ऐसा हुआ, और भागवत में वर्णन है केवल चार महीने में उनको भगवत प्रेम भी प्राप्त हो गया। तो आप सोचेंगे, प्रश्न करेंगे, अरे मैं तो काफी समय से भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं, कुछ तो गड़बड़ है, चार महीने से तो अधिक ही हो गया, चार महीने के काफी सेट लग गए लेकिन हमारा अभी प्रेम प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जो भी है, उसमें लिखा स्पष्ट कि चार महीने में उनको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, और जब वो चले गए तो उसके कुछ समय के बाद उनकी जो माँ थी वो मर गई, तो माँ का संस्कार तक नहीं किए। इतना उनको वैराग्य हो गया और समझ गया कि भगवान की कृपा है, तो वो जंगल चले जाते हैं, फिर वहां आगे भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। तो अब दासी के पुत्र थे तो ये स्पष्ट है कि वो बीटेक नहीं किए हुए थे, ये वो पढ़े हुए नहीं थे। दासी के पुत्र थे तो ये स्पष्ट है कि वह पढ़े लिखे नहीं थे। तो यहां प्रभुपाद जी इस बात को उदाहरण को दे रहे हैं कि कोई पढ़ा लिखा हो और तभी भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, ये तो गलत है। यहां पे किन किन माताओं को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, हाथ खड़ा कर सकते हैं? नहीं आता, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ये बात। इसीलिए सुनना पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे इसका मतलब नहीं कि पढ़ा ना जाए, लेकिन एक और दिक्कत स्वयं पढ़ने की केवल ये है कि अगर मार्गदर्शन में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ का कुछ समझ सकते, तो इसलिए कंफर्म करते चलना चाहिए कि भाई मैं जो समझ रहा हूं समझावट है वह क्या ठीक है, यह भी बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी एक और बात बोल रहे हैं यहां पे कि भागवत को भक्त को भक्तों से सीखना चाहिए। इस संबंध में एक छोटी सी लीला है चेतन महाप्रभु की। चेतन महाप्रभु के समय में एक देवानंद पंडित नाम के व्यक्ति होते थे, वो ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल वैरागी थे, कोई इंद्रिय तृप्ति कोई भोग उनके जीवन में नहीं था, लेकिन भक्त नहीं थे और भागवत में प्रवचन भी करते थे। और क्या किया, एक बार श्रीवास ठाकुर जी उनकी कथा में आके बैठ गए, बड़े प्रसिद्ध कथाकार थे, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहे थे कि भागवतम का सार है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, ये नहीं समझ पा रहे थे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, भागवत तो सब लिखा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं लोग गीता पढ़ के भी समझ नहीं पाते कि कृष्ण भगवान है, जबकि हर पेज पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भगवान है। तो भक्तों का संग प्राप्त ना कर पाने के कारण लोग नहीं समझ पाते। तो हुआ ये कि श्रीवास ठाकुर जी की कथा में थे और जब वह भागवत बोल रहे तो श्रीवास ठाकुर जी तो शुद्ध भक्त हैं, तो उनको एकदम मूर्छा अष्ट सात्विक विकार आ गए, तो बेहोश हो गए, बड़े जोर से बोला फिर वो बेहोश हो गए। तो उनके शिष्यों ने देवानंद पंडित के शिष्यों ने सोचा अरे तो भावुक आ गए, तो उसको जो है उठाकर बाहर फेंक दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो जब महाप्रभु को उनको देखते थे इतना क्रोध आता था कि तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं पता भागवत के बारे में, ऐसे करके। फिर ये देवानंद पंडित जो है आगे जाकर के महाप्रभु के एक पार्षद हैं, उनका नाम भूल गया मैं, वो 3 दिन लगातार डांस करते थे 72 घंटे, का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वक्रेश्वर पंडित। तो उनकी उनके प्रति आकृष्ट हुए, उनकी प्रति सेवा किया, फिर उनका अपराध का मार्जन हुआ। तो हम यहां देख रहे हैं कि भागवतों भागवत अपराध हो, वैष्णव अपराध होता है, या भागवत का भक्तों का संग नहीं होता तो भागवतों को समझ में नहीं आती। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अब हमें प्रैक्टिकल क्या सीखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी भागवत चल रही म्यूजिकल कथा चल रही है और हम बैठ करके सुनना चालू कर दें, यह कोई तरीका नहीं है। और आप कभी भी किसी भी भागवत कथा को सुन रहे हैं पहले ये देखिए वो लोग श्लोक बोल रहे हैं कि नहीं, श्लोक बोलकर नहीं समझा रहे हैं तो धोखेबाजी हो रही। भागवत कथा के नाम पर बिल्कुल पहला ट्रिगर तो ये देख लीजिए, पहला टेस्ट कर लीजिए कि वो श्लोक बोल रहे हैं कि नहीं, विषय समझा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए एक श्लोक को समझने में कितनी सारी बातें समझनी होती हैं। तो यह कभी सोचे कि कोई 7 दिन में भागवत पूरी कर देगा, ऐसी कथा में बैठना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी भी संस्था का हो, चाहे वह तथाकथित रूप से इस्कॉन का भी हो। तथाकथित मतलब वो इस्कॉन का लेबल हो सकता है, लेकिन हर संस्था में हर जगह लोग डेविएट करते हैं, तो वह नहीं, ऐसी कथा में नहीं बैठना चाहिए। इसका उद्देश्य ही भागवत का प्रचार करना नहीं है, केवल पूरा करना है, जैसे कि सत्यनारायण की कथा हुआ होती थी पहले। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या पॉइंट सीखे हैं, जरा देखिए। एक, श्रीमद् भागवतम का हम जब श्रवण करते हैं ठीक प्रकार से, भक्तों से सेवा करते हैं, तो हमारे हृदय में जो अभद्र है उनका नाश होता है और भगवान की भक्ति में निष्ठा होती है। एक चीज आप पता नहीं अनुभव करते हैं कि नहीं, लेकिन जब हम नाम की महिमा पढ़ते हैं और सुनते हैं तो कहीं हृदय में आपको एक स्पार्क अधिक जगता होता है कि हाँ मुझे नाम जप करना है। जैसे अभी मैंने एक शास्त्रीय इंस्पिरेशन में भेजा था कि भाई गुस्से से, पद्म पुराण का कथन है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध से क्रोध से ये मन कहीं और है, कैसे भी नाम जप करेगा तो वह मुक्त हो जाएगा, जैसे कि शिशुपाल मुक्त हो गया। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें हमारी नाम उच्चारण करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं शास्त्र ना पढ़ सके लेकिन श्रुति परायण है, अर्थात शास्त्र को सुनता है, तो वह भी मृत्यु को पार कर जाता है। बहुत सारी बातें हम पूरा रिसर्च नहीं करते हैं, लेकिन सुन करके उतनी बात अंश को ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं हम लाभान्वित होते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाए। तो इस प्रकार के श्रवण के द्वारा कैसी भक्ति हो जाती है? नैष्ठिकी। इसका मतलब है विक्षेप अभावात, उसमें कोई विक्षेप नहीं है, कोई परेशानी आएगी यानी कि कुछ कठिनाई आ गई तो उसके वजह से भक्ति छोड़ दे, ना, भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी ही है, ऐसा भाव हृदय में बहुत प्रबल हो जाता है और इसका अनुभव अपने हम हृदय में ही करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है यहां तक? इसलिए हमने माइक की व्यवस्था करी। यहां तक पूरा समझ में आ रहा है? ओके, अगला श्लोक 19वां है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतेर अनाविद्धम् स्थितं सत्वे प्रसीदति। तदा मतलब उस समय, यदा मतलब जिस समय, यदा तदा मतलब उस समय, तदा मतलब अब जब हृदय से निष्ठा आ गई है, हृदय से सब सफाई हो गई है, प्राय सफाई हो गई है, तो क्या होता है? प्रत्यक्ष देखिए, जो रज तम का भाव है, स्थिति रजगुण तमगुण के कारण क्या होता है? काम लोभ आदि। काम मतलब जगत को भोगने की इच्छा, इच्छा ही नहीं भोगने की इच्छा, इंद्रदित्ति की इच्छा, और लोभ मतलब, लोभ मतलब कोई वस्तु प्राप्त हो गई है, उसको और इकट्ठा करना है। जैसे धन प्राप्त करने की इच्छा काम में आ गया। अब ऐसा नहीं कि 10,000 से संतुष्ट हो गया, 10,000 मिल गया है तो फिर 20,000 चाहिए, 20,000 चाहिए तो फिर 30,000 चाहिए, तो यह हो गया लोभ। और आदि का अर्थ क्या होगा? क्रोध और जितने भी दुर्गुण है वह सब, ये सब जो है ये समाप्त होने लगते हैं। प्रभुपाद इसमें समझा रहे हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो ये बड़ा प्रत्यक्ष रूप से, फिर जैसा हम बुखार को अनुभव स्वयं करते हैं और जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो उसका भी अनुभव स्वयं करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में प्रगति करने के लिए दूसरे को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि महामंडलेश्वर महान भक्त, ऐसा नहीं है, ये कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं हृदय में अनुभूत करें कि कितना हम काम और लोभ से मुक्त हुए। एक बार एक सन्यासी अपना वक्तव्य कह रहे थे, अब उनका एक शायद मेडिटेशन था या जो भी रहा हो, अपना प्रभुपाद जी से वो पास जा रहे हैं और प्रभुपाद जी से बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने बहुत बड़े फार्म बनाए, मैंने ये किया, मैंने बहुत प्रीचिंग किया, मैंने किताब वितरण किया, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या आप काम इच्छा से मुक्त हुए? उसको उस पर वह सन्यासी चुप हो जाते हैं। फिर बोलते नहीं प्रभुपाद, फिर देखिए मैंने वहां इतने लोगों को प्रचार किया, मैंने फिर ये काम किया, फिर मैंने काम किया। फिर प्रभुपाद जी पूछते हैं क्या आप काम वासना से मुक्त हुए? फिर उसका तत्पर्य ने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। फिर प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं क्या आप काम इच्छा से मुक्त हुए? तो फिर वह बड़ी नम्रता से कहते हैं नहीं प्रभुपाद, मैं अभी मुक्त नहीं हुआ। इतना आसान नहीं है, जिसके पास भी शरीर है ना, क्या नाम है, कपिल देव जी कहते हैं ये जो भौतिक शरीर जिसके पास भी है, भगवान नारायण को छोड़कर सबके हृदय में काम वासना है। तो ये है इसको, और कोई हम आप कह नहीं सकते कि मेरे हृदय में नहीं है तो शरीर क्यों प्राप्त हुआ? अगर कोई भोग की इच्छा नहीं थी पिछले जन्म में शरीर त्यागते समय तो फिर क्यों? और मैं कई बार बोलता हूं कि केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है, रसगुल्ले खाने की इच्छा या कुछ भी, और ये भोग लूं वो भोग लूं, सुंदर दिखने की इच्छा, कोई भी इच्छा जो कृष्ण की सेवा से इतर है वह काम है। प्रसिद्ध होने की इच्छा, सुस्थूल या सूक्ष्म जो भी इच्छा है वह सब काम इत्यादि के द्वारा। तो इससे चित्त हमारा बिंधा रहता है। तो कह रहे हैं चेते एतेर अनाविद्धम, इनसे जो चित्त है मन है वह अनाविद्ध हो जाता है। अनाविद्ध बड़ा अच्छा शब्द है, बिंधना समझते हैं, बिंध जाना, जैसे कोई व्यक्ति किसी तीर से बिंध जाए, अर्थ समझते हैं? मोती बिंध जाते हैं, लेकिन और आप अर्थ समझ रहे हैं, कोई किसी को तीर मारे तो तीर से वो बिंध जाता है, बिंध समझते हैं, बिंध ना घुस जाता है। तो ऐसे ही हमारे हृदय को ये दो तीर लगे हुए हैं, रजोगुण और तमोगुण का, जिसकी वजह से काम और लोभ बड़ा रहता है। तो यह जो है अनाविद्ध हो जाते हैं, मतलब वह तीर निकल जाता है, अब ठंडा हो गया हृदय, अब आराम से भक्ति कर सकता है। इसमें कह रहे हैं स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, बहुत अच्छा श्लोक है। अब जब उसका चित्त सत्व में आ गया तो वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है। यह चीज हम भगवद गीता में भी सुनते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में आ गया उसके हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं रहती, उसे कुछ प्राप्त करना नहीं रहता, वह केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं कि सच्ची भक्ति शुरू होती है जब हम सतगुण में स्थित होते हैं। सच्ची भक्ति मतलब भक्ति का सुख अनुभव होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, कृष्ण भावना ये अनुभव करने वाली वस्तु है। जैसे रसगुल्ला कितना बड़ा होता है, प्राय 2 इंच होता है, किस रंग का होता है, वाइट होता है, उसमें क्या क्या होता है, चीनी होती है, छेना होता है, बस यही जान लेना पूर्ण है। आपने पूरा समझ लिया कि भाई छन्ना ऐसा होता है, ऐसा होता है, इतना बड़ा होता है रसगुल्ला उसमें रहता है, लेकिन खिलाओ तो सही। तो रसगुल्ले जानने का मतलब है कि उसका अनुभव हमें होना चाहिए। तो भगवान का नाम, भगवान की कथा का जो सुख है उसका हमें अनुभव होना चाहिए, और वह अनुभव करने के लिए भक्ति। ऐसा नहीं कि भक्ति में थ्योरी है और कुछ अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। इसको भगवान गीता में कहते हैं, प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्यम। भक्ति करना बड़ा सुखमय है, आसान है, और इसका प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जैसे स्वर्ग प्राप्त होता है ऐसे भक्ति आपको मरने के बाद प्राप्त होगी, इसी समय अनुभूत होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि स्थितम सत्वे प्रसिद्धि। अब इसमें बहुत सारी बातें कहने के लिए, पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आगे बताएंगे पॉइंट्स। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजगुण तथा तमगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। देखिए, कृष्ण भावना में आना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता, सुकृत नहीं होता। मेरे ख्याल से व्हाइट लाइट ऑफ कर देंगे, ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ी पीली रोशनी से लोगों को नींद भी आ सकती है। हाँ, अभी ठीक है, अब थोड़ा अलर्ट है। सब चीज का प्रभाव होता है ना, रोशनी का भी प्रभाव होता है। तो हम ये कह रहे थे कि कृष्ण भावना में आना कठिन होता है, ये तो सभी जान रहे हैं, सब लोग आते नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं तो इतनी भीड़ हो गई कि बैठने की जगह ही नहीं हो रही है, अरे सब लोग जुटे, बड़ी भागवत हो रही है, तो हमें भी सुनना है। तो ऐसा नहीं होता, बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अब उसमें भी आगे दिक्कत यह है कि भक्ति में बने रहना बहुत मुश्किल होता है। आप भी देख रहे हैं कितने ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल में, इस भागवत के स्कूल में खूब ड्रॉप आउट होता है। प्रभुपाद जी से पूछा, अरे प्रभुपाद जी ये चला गया वो चला गया, कहते हैं ये आश्चर्य मत करो कि वो चला गया, ये आश्चर्य करो कि बाकी लोग हैं कैसे यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे भी हम देख रहे हैं, मैं खेती का एग्जांपल दूं, खेती करना चालू नहीं किया, बीज डाला नहीं, थोड़ा अंकुर आए उतने में सूअर आ गए खाने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे सूअर घूमते हैं, सूअर अर्थात आपकी भक्ति को नष्ट करने वाले बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। कुछ का कुछ बता देंगे, अरे वहां के हरे कृष्ण वालों के पास क्यों जा रहे हो, मेरे पास आ जाओ 15 दिन में तुम्हें भगवान दिखा देंगे। ऐसे बहुत सारी बातें आप लोगों को भी शायद कहने वाले लोग होते होंगे कि हरे कृष्ण क्यों कर रहे हो, और भी कुछ कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे हमारी भक्ति को खाने वाले, भक्ति के बीज को खाने वाले लोग घूमते रहते हैं। साथ साथ हमारी इंद्रियां भी हैं जो परेशान करती रहती हैं। तो ये भक्ति में बना रहना मुश्किल होता है, और भक्ति में सुखी रह बनाना ये और मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको प्राप्त हो रहा है कि भक्ति में हम सुखी कैसे हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमें अब जल्द मतलब प्रयास करके अधिक अधिक सतोगुण का संग करना बहुत जरूरी है। जब हृदय में सतोगुण की वृद्धि होती है तो नाम बहुत अच्छा लगता है और भगवान की कथा भी अच्छी लगती है। मैंने अपने आश्रम में देखा कि हमारे 5-6 भक्त तो भगवद गीता कथा सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं, और एक भक्त हैं जो बिल्कुल कभी नहीं प्रवचन में आते, और अगर उनसे हम दुनिया की बात करेंगे तो तुरंत वह है आपसे 2 घंटा रूम में बैठ जाएंगे, 2 घंटा बात करेंगे। तो कारण क्या है? हृदय में सत्व का अभाव। तो ठीक है, मंदिर में तो हम रह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना कम हुआ। जिसके हृदय में सत्व नहीं है उसको कथा वथा सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं होगी, बिल्कुल बैठने का मन नहीं करेगा। अब मेरी बातें समझ रहे हैं? और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, भले ही वही वस्तु आप सुन रहे हैं लेकिन आपको उसमें बहुत सुख मिलेगा, आप उसमें मनन कर पाएंगे। ये सब बातें मैं बिल्कुल अपने अनुभव से बोल रहा हूं। तो ये अनुभूत होता है कि इस प्रकार से हमारे हृदय में सत्वगुण बढ़ रहा है, हमें श्रीमद् भागवत को सुनने में अच्छा लग रहा है। तो यहां बोल रहे हैं स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, भगवद गीता से ले लेना चाहिए इस बात को, कि सत्वगुण सुख जो है वह शुरुआत में कड़वा लगता है, तो उस कड़वेपन का अनुभव हमें करना ही पड़ेगा। जो पी लिया का रोग होता है, रोगी होता है, मीठी चीजें कड़वी लगती हैं, तो अब वह बिना उसको किए, बिना मीठी वस्तुएं खाए जो उसे कड़वी लग रही हैं, वह कभी भी अपने स्वाद को दोबारा स्थापित नहीं कर सकता है। इसीलिए भक्त संघ आवश्यक है। तो हम जब भक्त संघ में होते हैं तो बड़ी आसानी से कथा इत्यादि में हम लोग प्रवेश कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने क्या सीख रहे हैं श्लोक में, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, किस प्रकार के श्रवण से, नित्य श्रवण से। तो जो भक्त यहाँ पे हैं उपस्थित, उनको एक चीज तो सीख लेना चाहिए कि मुझे रोज बिना नागा, बिना नागा बोलते हैं, बिना नागा, बिना गैप किए भागवतम का एक श्लोक तो कम से कम पढ़ना है, इतना तो पढ़ना ही है। और ये मतलब मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं, जैसे 16 माला भी मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। तो एक, और आप देखेंगे कि मन कहीं रोक रहा है आपको, अरे नहीं भागवत नहीं पढ़ना, अब और पढ़ लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, लेकिन भागवत नहीं पढ़ना। तो ये सब कौन रोकने वाले हैं, ये रजोगुण तमोगुण है, ये असुर हैं। तो इन्हीं का नाश करने के लिए नियमित पढ़ना, चाहे नहीं समझ में आए लेकिन पढ़ना है। और जब आप देखेंगे एक और सहायता के लिए कि जो हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, इसको आप यहाँ पे सुन लिए, अब इसको अगर आप वापस पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा, और भी अच्छा होगा कि आप इन श्लोकों को तो हम क्रमांक क्रम से पढ़ रहे हैं, उनको पहले से पढ़ के आएंगे तो और अधिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आके हम थोड़ा और प्रयास करेंगे कि इसको और समझा सकें। प्रभु जी के पास अगर वो आप पढ़ना जानते हैं तो उनको भी वैसे बुक दे सकते हैं, आप पढ़ना जानते हैं भागवत, ठीक है। हाँ, अनुवाद मैंने पढ़ लिया था ना, यस। तो इस संबंध में मेरे काउंसलर परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जी ने बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे बोली थी, बहुत शुरुआत में ही भक्ति की, उसे भी करना बड़ा कठिन होता है, कि अगर हम नाम में सुख चाहते हैं, हरि नाम करते हुए सुख चाहते हैं, तो चित्त में यही बात बोल रहे, सतोगुण बढ़ाना होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, वे नियमित रूप से करें, एक ही समय पर उठें, एक ही समय पर खाएं, एक ही समय पर सोएं। तो इसको करने से चित्त में सतोगुण बढ़ता है, तो फिर आपको भक्ति की जो डायरेक्ट भक्ति की क्रियाएं हैं, श्रीमद् भागवतम, नाम जप, ये सब करना अच्छा लगने लग जाएगा। तो यह भी, इसके लिए भी आवश्यक है कि भक्त संघ हो, ताकि उनके संग में हम नियमित रूप से भक्ति कर सके। तात्पर्य, अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। कहने का अर्थ प्रभुपाद जी का ये है, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो स्वरूप में अगर जीव स्थित रहता है तो उसके हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं होती, वह प्रकृति पे कभी भोग नहीं करना चाहता, जगत को कोई भोगने की इच्छा नहीं होती है, और यह हमारी स्वरूपगत स्थिति है। एक अच्छी बात है कि इस जगत में हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन वस्तुओं को प्राप्त करने का, उन अवस्थाओं को प्राप्त करने का जो हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग है। इस जगत के भोक्ता हम बनना चाहते हैं, जबकि वास्तविक रूप से हम भोक्ता नहीं हैं। और कृष्ण के दास हम हैं या हम बनना चाहते हैं, हम हैं, तो वस्तुतः हमें कुछ बनना नहीं है। समझ में आया, पूरी तरह से शुद्ध होना यह हमारी स्वरूपगत स्थिति है। भले ही इनको भी बड़ा कठिन लगता है कि हम सारी भौतिक इच्छाओं को कैसे त्यागेंगे, लेकिन यही हमारी स्वरूपगत स्थिति है, यही जीव का स्वरूप है कि भगवान से निस्वार्थ प्रेम करे, केवल कृष्ण के बारे में सोचे, कृष्ण की सेवा करे। ये बात समझ में आ रही है, कठिन हो रहा है, नहीं समझ में आ रही? भाई जैसे आप जज बनना चाहें तो हो सकता ना बने प्रयास करने के बाद। मैं कृषक बनने का प्रयास कर रहा हूँ, कृषक तो नहीं, फार्म की सेवा कर रहा हूँ, अब पता नहीं फार्म का सफलता प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है एक तरह से आप देखें तो, क्योंकि हम वही हैं, खाली भूल गए माया के प्रभाव से। और जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी मदद तो भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो हम अगर आश्रय लेते हैं इस विश्वास, ये बात समझ में आ रही है, कभी कभी लोग सोचते हैं अरे हम तो शुद्ध भक्त हो ही नहीं पाएंगे, शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे, प्रेम कैसे प्राप्त होगा, ये तो असंभव लग रहा है। लेकिन असंभव, असंभव बात नहीं बोलूं ना भगवान, अगर प्रेम प्राप्त करना असंभव होता तो शास्त्र लिखे क्यों जाते फिर, भगवान के धाम में जाना असंभव होता तो शास्त्र लिखे क्यों जाते, बताइए क्यों प्रस्तुत करते। लेकिन साधन को पकड़े रहना है, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, साधन अगर प्रबल है तो जो साधक है वो उस खाली साधन का आश्रय ले तो पार हो जाता है, आप खेती किए हैं क्या प्रभु जी? आप पूछिए, आप कभी खेती किए हैं? खेती किए हैं क्या घर में? यहाँ पे मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। करी है तो खेती करने के लिए कोई बहुत पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना होती है। अब कहो कि एक साइंटिस्ट है कि तुम एक गेहूं का दाना उगा लो तो वो नहीं उगा सकता अपनी लेबोरेटरी में। लेकिन एक किसान चाहे पढ़ा लिखा ना हो टनों टन गेहूं उगाता है, तो सही साधन का प्रयोग करते हैं तो फल प्राप्त हो जाता है। और गलत साधन का प्रयोग करेंगे, टेस्ट ट्यूब में सोचें कि भाई हम गेहूं बनाएंगे तो बहुत पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन एक गेहूं का दाना भी प्राप्त नहीं होगा। तो जो कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान मतलब भगवान कृष्ण, उनके बारे में श्रवण करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन वह भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें भौतिक योग्यता की कोई अपेक्षा नहीं है। केवल ही भगवान कृष्ण से प्रार्थना करे, भगवान मैं तो कुछ नहीं जानता, आपका नाम जप कर सकता हूं, पार हो जाएगा। वेद इस बात को बोल रहे हैं कि भगवान आपका नाम चिदात्मक है, वह अपने आप को प्रकाशित करने वाला है। तो जो कोई नामचरण करेगा वो चाहे बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, वह भी भगवान की बात समझ लेगा। देखिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रभुपाद जी, यहाँ जो आचार्यगण हैं उसमें से तीसरे जो व्यक्ति हैं, आप कोई दिखा सके तो, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो अंगूठा छाप थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और जो उनके शिष्य हैं श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी, प्रकांड पंडित थे, विश्व के सबसे बड़े स्कॉलर, और उन्होंने उनसे दीक्षा क्यों प्राप्त करी? अरे जो अंगूठा छाप व्यक्ति उससे क्यों दीक्षा प्राप्त करी? बिल्कुल यहां तक उनका संकल्प था कि अगर आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि सारा हृदय जो उनका जो ज्ञान था वह भगवान के नाम उच्चारण से हृदय में ही प्रकाशित हो गया था। ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, शायद आप समझ नहीं पा रहे। भगवान का नाम सूर्य की तरह, जो नाम उच्चारण करेगा उसके हृदय की जो माया है, अविद्या है, वह नाम है अपने आप ही ध्वस्त कर देगा, तो समझ पाएगा भगवान को। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? शायद अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। नाम भगवान से अभिन्न है। जब आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो जीभ पे भगवान आ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं हरे कृष्ण तो कान के द्वारा हृदय में जा रहे हैं। तो अविद्या अज्ञान जो है वो हृदय में है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो भगवान स्वयं ही इसको नष्ट कर देंगे, जीव के स्वरूप को स्वयं ही प्रकट कर देंगे। इसके लिए कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, इतना प्रबल साधन है वेद स्वयं, ऋग्वेद का ये वचन है, जीव को समझिए कोट करते हैं। तो इसीलिए बार बार नामोच्चारण करते जाएंगे तो अपने आप भगवान की बात आपको अधिक समझ में आएगी। अभी भी अनुभव कर रहे होंगे भाई, जो डिग्रियां आपको प्राप्त है, जो बुद्धि है, उसमें तो कमी ज्यादा नहीं आई है ना, वो तो उतनी बुद्धि है। तो लोग सोचते हैं बुद्धिमान लोग समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो नाम जप करता है वह भगवान की महिमा को समझ पाता है, वो हृदय में भगवान प्रकाशित कर। चलिए अब नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं आगे। यह आत्मतुष्टि, एक मिनट, यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था या आत्मानंद का अर्थ क्या है? इसमें हृदय पूरी तरह शुद्ध है और भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति, भगवान का स्मरण कर रहा हो या भगवान का श्रवण कर रहा हो या कीर्तन कर रहा हो, तो उसको बहुत सुख मिलना प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं? आत्मा आनंद का मतलब क्या है, या ब्रह्मानंद का मतलब क्या है यहां पे, कि भगवान की भक्ति जब कर रहा है तो उसको बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, ये इसका अर्थ है। और इतना सुख प्राप्त हो रहा है कि उसको बाहर के भोगों से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी प्रत्यक्ष में बता रहा था कि मैंने सुबह बहुत सारा प्रसाद पाया, तो प्रभु जी घर में बहुत अच्छा प्रसादम था और भक्त लोग पा भी रहे थे, लेकिन मेरे हृदय में स्पृहा भी नहीं हो रही थी कि मुझे खाना है। और सुबह क्योंकि कल फास्टिंग किए थे तो सुबह इतनी भूख लग रही थी, तो प्रसादम वितरण हो रहा था क्योंकि जगह नहीं थी, हमने कहा चलो बैठने की जगह नहीं तो थोड़ा सर्विंग कर लेते हैं। पहले तो इच्छा ये थी कि जाके बैठ के तुरंत प्रसाद पाना है, क्योंकि बैठने की जगह नहीं तो हमने कहा चलो वैष्णव सेवा कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, थोड़ा सर्विंग किया, उसके बाद प्रसाद पाया। तो वह स्थिति अलग है, यह स्थिति तो है भरी, हम खा नहीं रहे हैं, खाने की बहुत इच्छा है, ये साधक की स्थिति है। लेकिन आत्मानंदी की स्थिति क्या है? भगवान की भक्ति से इतना सुख उसको प्राप्त है, कोई स्प्रिया ही नहीं जगत को भोगने की, बिल्कुल कोई भी भोग प्रस्तुत कर दे जाए उसे कुछ भी इच्छा नहीं होती। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि महान भागवत कैसे होते हैं, बोलेंगे तुम आधे सेकंड के लिए भगवान को भूल जाओ, बस केवल आधे सेकंड के लिए तुम्हें तीनों लोगों का राज्य दे देंगे, तो कहते नहीं वह भी नहीं कर सकता मैं, इतना सुख प्राप्त हो रहा। मेरे ख्याल से माता जी को बैठने में कठिनाई हो रही है, आप कुर्सी है तो कुर्सी की व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो यह जो है इस प्रकार का सुख है। इस चीज को भगवान गीता में कहते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतेन्द्रियम वेत यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। यही बात बोल रहे हैं कि जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो इतना सुख मिलता है भगवान की भक्ति से कि चाहे कितना भी बड़ा कष्ट आए व्यक्ति भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होता। हम फिर वही एग्जाम्पल लेंगे प्रहलाद महाराज का, हरिदास ठाकुर का, और सबके जीवन में कष्ट भी आएगा लेकिन वह छोड़ेगा नहीं भक्ति। निष्क्रिय, हाँ, यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञानावस्था में रहता है किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। मैं इसलिए एक एक लाइन को पढ़ के समझा रहा हूं क्योंकि इसको शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। बहुत से लोग दुख भोग रहे हैं, सभी लोग दुख भोग रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग रजाई ओढ़ करके सोते रहते हैं। ये हो गया तमोगुण का सुख, सुख नहीं लेकिन अज्ञान में पड़े हुए हैं, शराब पड़ के नाली में पड़े हुए हैं तो किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ता, जगत में कुछ भी होता रहे। तो यह निष्क्रिय अवस्था, यह मूर्ख की बुद्धि है इस प्रकार से। लेकिन आत्मानंदी जो व्यक्ति है उसका अर्थ क्या हुआ, भौतिक जगत से परे है, मतलब भले ही वो इस जगत में है लेकिन जगत के भोगों से इसका कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान की भक्ति में ही सुख अनुभव करता है। तो इस प्रकार से वह जगत की क्रियाओं में सक्रिय नहीं रहता, इतना अवस्था हो जाती है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। ये समझिए इसका अर्थ। देखिए प्राय लोग सोचते हैं कि अभी हम भजन कर रहे हैं, इतना सब मेहनत कर रहे हैं, आज हम सिद्ध हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, यही सोचते हैं, यही सिद्धि है। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि भाई जो व्यक्ति रस्सी में बंधा हुआ बहुत हाथ पर चला रहा है, मतलब बंधा हुआ है लेकिन फिर भी मतलब झगड़ रहा है कि मुझे कुछ करना है, और रस्सी खोल देंगे तो क्या फिर सो जाएगा। तो हम अभी तीन गुणों की रस्सियों से बंधे हुए हैं तब भी कितना एक्टिव है, बहुत सारा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जब इन गुणों से प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तब समझ में आएगा अरे अब मेरा असली जीवन शुरू हुआ है। प्राय लोग बोलते हैं भाई ये जो ज्ञानी होते हैं ना वो आप कुछ बोलते नहीं, चुप रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन के सन मुखरितम भवतीय वार्ताम, जो भगवान की महिमा को समझते हैं वह तो मुखर हो जाते हैं। आगे अगर भगवान जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे प्रश्न आएगा कि सुखदेव गोस्वामी तो किसी से बात नहीं करते थे तो वह 18,000 श्लोक कैसे बोल दिए, क्योंकि भगवान की महिमा, भगवान का गुण इस प्रकार का, वो बहुत सुख देता है बोलने में भी सुनने में भी। समझ रहा है मेरी बात। तो कहने का अर्थ यह है कि कभी वही सोचना चाहिए कि भक्ति का मतलब है कि बस केवल ध्यान करो। बहुत सारे भक्तों को बोलेंगे जप करना है, भक्ति करना है, भोग लगाना है, मन में कर रहे हैं हम सब, लेकिन ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्ति का अर्थ हम क्या सीखते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से निरंतर कृष्ण की सेवा करते रहना। और यहां पे अनन्य सक्रियता का अर्थ क्या है, अनन्य सक्रियता का अर्थ है भगवान की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं करना, अन्य न अन्य अनन्य, अब और किसी की सेवा नहीं करनी है, कृष्ण कृष्ण के भक्त उनकी ही सेवा करना है और जीवन में कोई प्रयोजन नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। इतनी कठिन हिंदी है, इसको तात्पर्य को समझना बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है, बहुत फिलोसॉफिकल है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित या दूषित हो जाती है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से काम इत्यादि लोभ हमारे हृदय में जागृत होता है, फलतः काम इच्छा लोभ निष्क्रियता मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। अब समझिए इसका अर्थ क्या है। देखिए प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि रजगुण और तमोगुण का संग करने से जीव के चित्त में क्या प्रभाव होता है। रजगुण का प्रभाव होता है रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। जब रजगुण हमारे का हम संग करते हैं तो हृदय में बहुत इच्छा आती है जीने के लिए। देखा जाए तो 3x6 का स्पेस चाहिए, लेकिन कितने बंगले बनाते हैं, ठीक। ये हो गया तृष्णा, मतलब तृष्णा का अर्थ ही आज हम सीखे, तृष्ण मतलब जो है बढ़ता ही जाए, जितना देने वो और बढ़ जाए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इस प्रकार से तृष्णा होती है, प्यास जिसे कहा जाता है, और चाहिए और चाहिए, और वो चाहिए जो हमको प्राप्त हो नहीं सकता। तो यह सब किसकी वजह से होता है, रजगुण की वजह से। यह चीज हमें समझनी होंगी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि गुणों को हम देख नहीं सकते, सत्वगुण को हम देख नहीं सकते लेकिन उनके प्रभाव को देख सकते। तो उनके प्रभावों को अपने चित्त में देखते रहना चाहिए और थर्मोमीटर से चेक करते रहना चाहिए। भाई ये तो इच्छा नहीं आ रही ना कि एक बहुत बहुत बड़ा बंगला बन जाए और ये हो जाए और ऐसा हो जाए, और या फिर हम सोचे हैं अब मैं दिन भर सोता ही रहूं, क्यों इतना जप करना है, क्या भक्ति क्या सेवा करूं। कभी कभी ऐसे जब इच्छा आती है ना कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, तो यह देख लेना चाहिए कि यह किसके लिए हो रहा है, तमोगुण की तरह। हम लोग उसको सामान्य भाषा में बोलते हैं आज ये काम करने का मूड नहीं कर रहा है, आज वो काम करने का मूड नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ज्ञानी व्यक्ति समझता है इसका अर्थ क्या है, हमारे चित्त पे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हो रहा है। जो लगे मुझे बहुत कुछ करना है तो मतलब रजोगुण, अब बोले कि कुछ नहीं करना है चढ़ी क्या, तो फिर यह तमोगुण हो जाता है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति कार्य नहीं करता है क्या, कार्य करता है लेकिन ड्यूटी पूर्वक और शास्त्र अनुमोदन में, जो जितना आवश्यक है उतना प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत वस्तुएं प्राप्त करने, ये बात नहीं आती। सतोगुण का एक और फायदा होता है कि वह हमको भोग की स्पृहा से हम कम कर देता है। ये भी हम देख ही रहे ना, ये प्राप्त हो जाए, ये खाने को मिले, वो चाटे, समझ रहे ना, ये कुछ लोग ना चटोरे होते हैं, ये खाएंगे, भूख प्रसाद हो गया, चटनी भी चाहिए और अचार भी चाहिए और ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो यह सब दिखा रहा है कि यह रजोगुण में। अब कहेंगे प्रभु जी हो सकता है क्या हमारे अंदर ही गुण हो, तो ठीक है उसको निकालने का तरीका यह है कि बहुत अच्छा खाना चाहते हैं तो भगवान को समर्पित करके भगवान का प्रसाद खाइए, तो धीरे धीरे वह इच्छा भी चली जाएगी। बहुत अच्छा प्रभुपाद बोल रहे थे कि स्वाभाविक रूप से भक्त का यही स्वभाव होता है कि वह अपने लिए बहुत साधा रखना चाहता है और भगवान के लिए बहुत अच्छा करना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, ये सभी भक्तों में होना चाहिए। ये भी प्रत्यक्ष आप देख लीजिए कि अगर हम अपने को बहुत सजाना चाहते हैं तो भक्ति में कहीं गड़बड़ है। लेकिन अगर अब इसका मतलब ये भी नहीं कि फटे कपड़े पहनने हैं, लेकिन सादा जीवन भक्त जीना चाहता है और भगवान को बहुत अधिक से अधिक देना चाहता है। ये प्रेम का मुख्य लक्षण है। देख ये प्रेम का मुख्य लक्षण है ना, माताएं अपने बच्चों को अधिक अधिक खिलाना चाहती हैं, भले कुछ कादू आइटम नहीं भी हो। कभी बोल देंगे अरे मेरे खाने की इच्छा ही नहीं है, मेरे लिए रखा है, नहीं होता है रखा, लेकिन बच्चे को बोलते तुम खाओ मेरे लिए रखा हुआ है। तो ये प्रेम का लक्षण है, कृष्ण को अधिक से अधिक देना है, अपने लिए हम सीधा सीधा सादा सादा जीवन जी लें। ये बात भक्ति समेत महाराज भी बार बोल रहे थे और प्रभुपाद जी के प्रवचन में भी मैंने सुना। देखो एक एक बात हमारे हृदय में हमें चेक करनी है कि हमारा हृदय में क्या क्या बातें चल रही है। क्या हम बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, बहुत फैला के रहना चाहते हैं? और एक और कारण है, बहुत भक्त फैलाता नहीं अपने जीवन को, क्योंकि सब कुछ करने के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा। जितना अधिक है उतना अधिक को मेंटेन रखने, स्थिति बनाए रखने के लिए उसमें बहुत शक्ति लगती है, तो उतना ही आवश्यक रखता है जितना उसे भक्ति भक्ति ठीक से हो जाए। लेकिन भगवान के लिए बहुत कुछ स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि इन कार्यों के द्वारा, उन गुणों के प्रभाव के द्वारा बीमार अवस्थाएं, बीमारी वाले कार्य प्रकट होते हैं। फिर आत्मा इस जगत की है ही नहीं, तो उस जगत में बंगला बनाने के क्या मिल जाएगा बताइए? आप हैं जगत के, हम तो जगत के हैं नहीं, तो जगत में महान मूर्ख बन सकते हैं हम, और कुछ नहीं बन सकते, और कुछ नहीं बन सकते। और यह भी हम सब जानते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, जीरो पे खत्म करते हैं भौतिक रूप से, और बीच में हम लड़े मरे जाते हैं कि भाई इतना सामान कर लें। ये बहुत बार बार इन बातों को विचार करते हुए चलना चाहिए, कहाँ अपनी अपनी हम शक्ति को, अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं और समय क्या प्राप्त हो रहा है। तो यही बातें प्रभुपाद बोल रहे हैं, रुग्ण काल कर, रुग्ण मतलब होता है रोगी, कार्यकलाप मतलब रुग्ण क्रियाएं। जैसे व्यक्ति पागल हो जाए तो फालतू की बातें करता है, उसी प्रकार से रजोगुण तमो के प्रभाव से हम लोग प्रेरित किए जाते हैं फालतू चीजों के लिए। आप देखिएगा, समझ रहे हैं? एक बार एक व्यक्ति ने भी मुझसे प्रश्न किया, प्रभु जी मैं रजोगुण कैसे बढ़ाऊं? उन्होंने कहा अरे भगवान हम पूरे लगे पड़े हैं कि सतोगुण बढ़ जाए, कोई भगवान की भक्ति बढ़े, अब आप रजोगुण कैसे बढ़ाए? कहता मेरी नौकरी नहीं लग रही तो रजोगुण होगा तो मैं कुछ काम करूंगा। तो कहा ठीक है भाई, मैंने कहा मेहनत करने से पैसा आ जाता सारा कुछ, तो फिर सब रिक्शे वाले भी ऑलरेडी मेहनत करते। तो ये प्रभाव ही है, मैंने कहा आपको करने की जरूरत क्या है, कलयुग में तो आप किसी का भी संग करें तो रजोगुण तमोगुण वाले लोग ही हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं कि ये जो प्रभाव है, कुछ काम नहीं करना, मूर्ख होना, यह सब तमोगुण की वजह से होता है, और लोभ और काम जो है वह रजोगुण की वजह से होता है, तो यह सब नष्ट होता है। प्रभुपाद स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि ये सब चीजें नष्ट होती हैं। अब आप कहेंगे क्या सोता नहीं है व्यक्ति? जितना आवश्यक है बस उतना सोता है, ऐसा नहीं 10-10, 12-12 घंटे सो जाए। 6-7 घंटा सोना स्वाभाविक है सात्विक व्यक्ति के लिए, उतना ही वो सोते हैं। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजगुण तथा तमगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। ये समझ में आई। हम लोग कहते हैं प्रभु जी आप बोलते हो नाम में बहुत सुख है, कथा में सुख है, ये है वो है, कैसे अनुभव करेंगे, हमें तो अनुभव नहीं होता है। तो बड़ा स्पष्ट है अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, रजगुण तमगुण से हमारा चित्त बिंधा हुआ है। तो जैसे जैसे ये नष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे भक्ति के सुख का अनुभव हमको अधिक होगा। एक और चीज बोलना चाहता हूं कि निष्ठा के स्तर पर भक्ति के नियम तो आप नियमित रूप से करते हैं, आपको रोज सुख मिलने लगता है उसमें। ऐसा तो अभी हमारे संग क्या हो रहा है, कभी कभी जब अच्छा होता है कभी कभी हमें थोड़ा कठिनाई होती है, फिर अच्छा होता है फिर कठिनाई होती है। ये है, इसे कहते हैं अनिष्ठित भजन, मतलब किसी दिन अच्छा होगा किसी दिन नहीं होगा, लेकिन निष्ठा मतलब अब रोज करना अच्छा लगने लगेगा। ऐसे हैं द्रविड़ प्रभु हैं प्रभुपाद जी के शिष्य, तो उनके बारे में एक भक्त बता रहे थे मुकुंद दत्त प्रभु, वह भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, कि वो 16 माला के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते। देखिए 28 माला या और अधिक माला करना एक अलग बात है, लेकिन इससे कम ना कर पाना ये अलग बात है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं। एक बहुत अच्छे भक्त ने मुझे बहुत पहले बात बोली, तब मैं सुवर्ण था, कि कह लेते मैं 9 साल तक घिसता रहा माला, मेरे से कुछ मेरे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जो भी सेवा प्राप्त होती थी वह उसको मैं बड़े अच्छा मतलब बड़े सेवा भावना से करता था, कि चाहे मंदिर की झाड़ू मारना हो चाहे कुछ भी बहुत अच्छे से करे। तो अब मैं 32 से कम नहीं कर पाता, 32 कर रहा हूं ये नहीं बोला उसने, 32 से कम नहीं कर पाता मतलब उसको टेस्ट प्राप्त हो गया ये चीज। ऐसे ही परम पूज्य जयपता का महाराज ने अपने कुछ वरिष्ठ ब्रह्मचारी भक्तों को बोला, अरे आप लोग मंदिर की सफाई करते रहते हो बहुत समय हो गया, कुछ मैनेजमेंट की पोजिशन ले लो। तो मैनेजमेंट की सेवा भी मेरी सेवा है, मतलब गुरु की सेवा है। तो उन्हें बोला कि महाराज जी ये बताइए कि क्या यह मंदिर की सेवा जो मंदिर साफ कर रहे हैं ये आपकी सेवा नहीं है? अगर आप कहते हैं कि सेवा नहीं है तो हम आज ही मंदिर छोड़ देते। महाराज जी कैसे कहते हैं कि सेवा नहीं है? नहीं, ये तो है मेरी सेवा। बहुत सीनियर 20-20 साल हो गए ब्रह्मचारी आश्रम। तो बोले महाराज जी अब हमको हटा दिया जाएगा सेवा से, तो फिर यहाँ पे नौकर रख दिए जाएंगे और हमारी सेवा छूट जाएगी, और हमको जो नाम में रस प्राप्त हो रहा है वह भी नहीं, वह भी छूट जाएगा। तो अगर ये भगवत नाम का रस एक ऐसा मादक वस्तु है, वह अगर हमें प्राप्त होने लगता है, आप सभी को अनुभव होगा जब कभी बहुत अच्छा लगता है तो हृदय से ये अच्छा होता है भगवान ऐसा कुछ फॉर्मूला बता दीजिए कि ऐसा हम कुछ करें कि रोज हमको ऐसा रस प्राप्त हो जाए, वो सबसे अधिक मादक वस्तु है। एक बंगाली में कहावत है, गाना है, हरि नाम की आनंदे डुबले जेना जाए, समझे, हरि नाम में क्या आनंद है जो उसमें डूबा है वही जानता है और कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो ये बात है। तो ये हम लोग को धैर्य पूर्वक, अब जब प्रभुपाद जी के शिष्य द्रविड़ प्रभु आ गए हैं इस स्थिति पे, और अब वो ब्रह्मचारी भी आ गए और हमारे जयपता का महाराज के शिष्य भी आ गए, तो हम भी आ ही जाएंगे, समझ रहे ना, गिरते पड़ते खींचते खांसते आ ही जाएंगे, श्रद्धा के संग भगवान का नाम जप करते रहे, ठीक है। ध्यान रखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्रमशः भगवान सारे कठिनाइयों को दूर करते और करेंगे ही। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं एक बात बताना चाहता हूं, एक कथा है, छोटी सी कथा, वह छोटी सी कथा और वह नामाश्रय से संबंधित है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, उसको भूले बिना मैं रह नहीं जा रहा। मार्कंड ऋषि के बारे में आप जानते हैं, मार्कंड ऋषि लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में बता रहा, मार्कंड ऋषि को कुछ साल तक ही जीना था, 6 या 16 साल। तो उनके माता पिता ने बताया कि बेटा जब उनको 16 साल था, तो मुझे स्मरण आ रहा 16 साल तक, तो 16वां साल आने लगा तो उनके माता पिता बड़े दुखी होने लगे। तो बोला आपने दुखी क्यों हो इतने, वैसे वो बहुत तेजस्वी बहुत अच्छे मतलब बेटे थे, बड़े प्रसन्न रहते थे माता पिता, लेकिन 15वें साल से ही उनका मन दुखी होने लगा कि अब लड़का जो है मर जाएगा। तो उन्हें बताया ऐसा ऐसा होगा, तो कहले ठीक है, तो फिर वह जंगल चले गए, कहले आप मेरा मरण सामने मत देखो, आप जो है बहुत कष्ट होगा, लड़का सामने मरता हुआ थे तो बड़ा कष्ट होगा। और वह शिव जी की पूजा कर रहे थे, शिव जी के भी भक्त थे, शिव जी की पूजा कर रहे थे। तो जब यमराज जी उनको लेने के लिए आए, तो जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे वो शिवलिंग को उन्हें कस के पकड़ लिया कि अब हमें कोई बचा नहीं सकता। तो यमराज जैसे रस्सा मारे, रस्सा होता है यम पाश बोलते हैं, तो वो पाश जो है शिवलिंग के ऊपर भी पड़ गया। तो शिव जी कह रहे इसने बहुत कर दिया इसने, तो शिव जी प्रकट होगा सामने से, कहे कि तुम इसको नहीं ले जा सकते, कहते नहीं मेरा मतलब हक है, मैं इसका मृत्यु का समय आ गया है। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसने मेरा आश्रय लिया है, मेरा एकांतिक आश्रय लिया है, तुम नहीं ले जा सकते। तो फिर यमराज जी ने कुछ युद्ध करने का प्रयास किया, तो उनको यमराज जी को शिव जी मार ही दिए अपने त्रिशूल से। तो ये बड़ी स्थिति, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कोई मरना ही बंद हो गया, यमराज जी मर गए तो फिर कौन मरेगा। तो फिर देवताओं ने प्रार्थना अर्थना किया, तो फिर से वह जिंदा हो गए। तो मैं अपने भक्त से बात कर रहा था, हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु से, तो हम बात कर रहे थे कि देखो एक बात हमें शिक्षा सीना चाहिए थी, एकांतिक आश्रय लिया हमने, कि जो भी मारो भी रखो भी जो भी शिव जी का आश्रय लिए, तो उसी प्रकार से हम भगवान के नाम का आश्रय लें तो निश्चित रूप से भगवान के नाम की कृपा प्राप्त होगी। कि ये जो हम 16 माला कर रहे हैं बस यही हमको पार कर देगा, इस भावना से हम माला करें ना, होल हार्टेडली जैसे कहते हैं, पूरे हृदय से करें, जितना भी हमारे पास शक्ति करें, तो निश्चित रूप से आपको भगवान के आश्रय प्राप्त है। नहीं भी करेंगे तो भी प्राप्त है, लेकिन अगर इस भावना से करें तो कितना अच्छा होगा। कि और कोई गति नहीं, और कोई आश्रय नहीं, और वास्तविक बात है कि और कोई आश्रय नहीं है भगवान के नाम के लिए, कोई आश्रय नहीं है। तो ये इस प्रकार से आश्रय लेकर के भजन करें, नहीं कर पा रहे तो कम से कम स्प्रिया होनी चाहिए कि हम ऐसे इस प्रकार से आश्रय लेकर भजन करें, तो बहुत हमको भगवान से आदान प्रदान प्राप्त होगा। वैसे देखिए भगवान थोड़े अलग भी हैं, भगवान स्पष्ट रूप से गोपियों को बोलते हैं कि जो मेरा भजन करता है तो मैं तुरंत उसके सामने प्रस्तुत नहीं होता, ताकि उसकी उत्कंठा बढ़ जाए। फिर से मैं उसको समझाता हूं, भगवान तुरंत प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, यही उनका आदान प्रदान है। समझ में आया? आप हरे कृष्णा करते तुरंत भगवान आ जाते हैं। अच्छा कह रहे, तो बहुत आसान है कृष्ण को प्राप्त करना, कुछ नहीं, ये कह गए भगवान है, कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं करता ना उसको। तो भगवान जो है अपने भक्त के हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए तुरंत अपने को प्रत्यक्ष प्रस्तुत नहीं करते, लेकिन विभिन्न तरीकों से, भक्तों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से आपको हमेशा सहायता भेजते रहते हैं। अपने जीवन में अनुभव करते होंगे आप, कहीं आपको लगे मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए, आपको दिशा प्राप्त हो जाएगी। भक्तों के माध्यम से कुछ हो जाता है, कई बार प्रवचन करते हैं, भक्त बोलते हैं प्रभु जी ये प्रश्न मेरे हृदय में था तो आपने प्रवचन में बोल दिया। लगा हाँ ऐसा होता है कई बार, तो वो जो प्रवचन करता है उसको भगवान प्रेरणा देते हैं, ये बात बोल दो, उस बात को समझ में आ जाए भक्त को। तो मैं खाली बात कर रहा था कि हमें भागवत का, भगवान के नाम का इस प्रकार से आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, हम खैर पार्ट पर आते हैं। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, सक्रियता है, एक्टिव सेवा है। और एक बहुत बात रखना चाहिए, एक्टिव में मतलब मन में स्प्रिया भी होती है कि हम भगवान की सेवा इस प्रकार से करें, भगवान को इस प्रकार से संतुष्ट करें, इस प्रकार से। ठीक है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि राधा श्याम सुंदर, क्या नाम है भगवान का, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कि उनके लिए माता जी ने स्वयं अपने हाथ से फूल माला बनाई है। बहुत अच्छी बात है, ये शायद आपने बाहर से खरीदा, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब कोई भक्त इस प्रकार से माला बना रहा है तो पहले ही चीज उसके मन में आता है कि मैं अपने विग्रह भगवान के लिए बना रहा हूं। ये कभी किसी बाहरी मालाकार को आप नहीं बोल कर सकते। आप पैसे भी दो, तुम सोचना कि तुम भगवान के लिए बना रहे हो, कभी नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कितने रुपए की माला बिकेगी, कभी नहीं सोच सकता। जो खाना माता जी बना रही है, खाना भगवान के लिए बना रही है, मैं भगवान के लिए बना रही हूं, मुझे भी चखना नहीं है, तो ये हमारी कृष्ण चेतना है। इसीलिए भगवान का विग्रह घर में होना चाहिए। तो खाली सक्रिय, हम एक्टिव हैं, आप मेरी बातें समझ रहे हैं, एक्टिव। जैसे कोई आपका मित्र हो तो वो एक्टिव आपसे मित्र होता है, आप भी कुछ बोलते हो, वो भी कुछ बोलता है, एक्टिव होता है। उसी प्रकार से कृष्ण भी चाहते हैं कि हम लोग एक्टिव बने रहे, ऐसे नहीं है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा 5:30 हरे कृष्णा राम राम 6:30 हरे कृष्णा। यह भक्ति भी करेंगे तो होगा, लेकिन उत्साह के संग भक्ति करना है तो हम उससे प्रगति करते हैं। ठीक है, आत्मा की है, हम इसको पढ़ के रुक जाएंगे, घबराइए मत। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से, हम पढ़ लिया ना इसको, हाँ ये पढ़ लिया था, पढ़ लिया। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने की ओर अग्रसर होता है। समझिए इसको, जैसे यहां से अगर आपको इंडोनेशिया जाना है तो हवाई जहाज से जाना है, तो हवाई जहाज से जाने के लिए पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होगा। तो एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट पहुंच गए इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडोनेशिया पहुंच गए, एयरपोर्ट हो गया सत्वगुण, वो एक में वहां से अब आप ऊपर उठ सकते हो। तो सत्वगुण भी भौतिक गुण ही है, लेकिन जो ये जो शुद्ध सत्व है ये भौतिक गुण नहीं है। इस पर थोड़ा समझ लीजिए, किसी भी अवस्था में जगत में भौतिक गुण जो हैं वह अमिश्रित नहीं रहते, कहीं रजगुण होगा, कहीं तमोगुण होगा, कहीं सत्वगुण होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यहां बात आ रही कि रजगुण तमोगुण का नाश हो जाता है और भक्त शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। शुद्ध सत्व में ही भगवान की अनुभूति पूर्ण रूप से होती है। किस प्रकार से भगवान अपने विग्रह से अभिन्न है, किस प्रकार से अपने नाम से अभिन्न है, किस प्रकार से भागवत से अभिन्न है, कब अनुभूति होगी? शुद्ध वासुदेव स्थित में। क्या इसको श्लोक है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। तो वसुदेव स्थिति है, उसमें सतोगुण भी नहीं होता है। फिर से समझिए, उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण कुछ भी नहीं होता, ये भौतिक है। जो वसुदेव स्थिति है वह पूरी तरह से दिव्य स्थिति है। ऐसा मत सोचिएगा कि रजोगुण तमोगुण को केवल माइनस कर दिया तो वसुदेव शुद्ध सत्व हो गया। ये सत्य रजगण तम है, यह तमो, ये सब भौतिक हैं। लेकिन वसुदेव जो स्थिति है, जो भगवान की भक्ति के द्वारा आती है, ये पूरी तरह से दिव्य स्थिति है। उस समय भगवान का अनुभव होता है। एक बात मैं कह देना चाहता हूं, यहां पे बोल ही रहे हैं, इसको निर्गुण अवस्था कहते हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं 4.9 की टीका में कि भक्त मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त करेगा, ये तो अलग बात है, इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर लेता है। मैंने पहले भी बोला था, इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आप वसुदेव स्थिति में स्थित हो गए तो भगवान से साक्षात बात कर सकते हैं, जैसे वरदराज जी से कांचीपूर्ण बात करते थे। अब ये कौन है, इसके लिए आपको श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की पूरी जीवनी सुननी पड़ेगी। वो साक्षात बात करते थे भगवान से, ऐसे करके। ठीक है, ये सब कोई खाली कहानियां ना मात्र नहीं है, हमारी योग्यता भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक भक्त को दीक्षा दिया और बोला कि अब तुम्हारा ये कार्य है कि तुम अपने को इस योग्य बनाओ कि तुम साक्षात कृष्ण का से बात कर सको। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो विचार कीजिएगा। हम सबकी दीक्षा हो चुकी है, पर हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम ये अपने को इतना योग्य बनाएं कि साक्षात कृष्ण से बात कर सके। ये सब संभव है, ये सब कहानियां नहीं है। चलिए आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जन निवास प्रभु, वो हेड पुजारी हैं मायापुर में। तो वह डीटी के इंस्टॉलेशन के लिए इधर आए हुए थे चौपाटी में, दलिता विशाखा जी का वहां पे डीटी का इंस्टॉलेशन था। तो उनका बहुत सारा आदान प्रदान है श्री राधा माधव जी से। तो भक्तों ने पूछा कि कुछ राधा माधव जी के आपसे आपका कुछ लीला या कुछ आदान प्रदान हुआ हो तो आप बताइए। तो उन्हें बोला कि बहुत बोला, तो पहले नहीं बोल रहे थे, फिर बोला कि उनने मुझे कुछ बताने के लिए मना किया है। तो हमारे गुरु महाराज बोले अब आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। समझ गया, जो भगवान से साक्षात बात कर रहे हैं वो जीवित हैं, जीवित हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, जीवित है। उनको थप्पड़ मारा था जगन्नाथ जी ने अभी वहां पे, उनको बुरा ऐसे कट गया था यहाँ पे बहुत जोर से। तो भगवान अभी इस कौन में भी ऐसे डिवोटी हैं, परम पूज्य जयपता का महाराज। मैं सब बातें बोल रहा हूं कि ऐसा संभव है, आप हम सबके लिए संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव है। भक्ति करेंगे तो सब हो सकता है। एक बार एक भक्त पुजारी ने देखा कि कौन सा कदम का फूल राधा माधव जी के चरण में अर्पित है, तो कहे ये तो मौसम नहीं है कदम का, ये कैसे हुआ, ये बेमौसम फल फूल कहां से आ गया। तो पूछे तो वो जन निवास को पूछे तो इससे पहले कभी पूछे कि कोई आए थे क्या महाराज भवन के सामने, तो बोले हाँ वो परम पूज्य जयपतक का महाराज आए थे। तो फिर महाराज जी के पास गए तो पहले महाराज कुछ बोले नहीं, फिर वो बहुत कुरेदा गया, पूछा गया तो बोले हाँ मैंने मन में एक कदम अर्पित किया था राधा माधव, मन में राधा माधव को कदम अर्पित किया, वह कदम सामने प्रस्तुत हो गया। और ये महाराज भी अभी हैं। तो ऐसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो शुद्ध भक्त कोई है ही नहीं, शुद्ध भक्त इसको प्राप्ति नहीं है, जो भक्ति किए हैं उनको प्राप्त है। ठीक है ना, ये मैं खाली बोल रहा था, इस प्रकार का आदान प्रदान जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में होता है तब वह इस प्रकार की अनुभूति कर सकता है, भगवान से बात कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। एक एक लाइन प्रभुपाद की कितनी डीप है, मच्छर मारे हैं हम लोग दीक्षा के बाद भी। अब देख रहे हैं ना कि ग्रंथ के अनुसार, इसीलिए लोग ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि गलतियां दिख जाती हैं, किसी की हानि नहीं पहुंचाता। कभी कभी हम ऐसा मच्छर ही मार देते हैं जिसमें हमें केवल संदेह होता है कि उसने हमें काटा है, जरूरी नहीं कि उस मच्छर ने काटा हो, शायद काटेगा तो उसे मार देते। अब बताइए कहां के भक्त बने हम, है ना, यह भी एक देखिए जीव अपराध होता है, इससे हमारी भक्ति में बाधा आती है। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं। मच्छरदानी लगा लीजिए, लेकिन मच्छर मत, ये सब भागवत में वर्णन, ये पाप होता है। देखिए मच्छर को नहीं पता है कि आपको आपको काट रहा है तो दर्द होता है, हम जानते हैं कि किसी को पीस दें तो कितना दर्द होता है। उसमें कोई मर गया वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से भक्त किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। आप जानते हो ना मृगारी की कथा, जो गर्दन को हिरण को मारता था, बाद में चींटी को भी नहीं मारना चाह रहा था। जब इस प्रकार के वचन सुनते हैं तो हम थोड़ा सोचते हैं, आत्मचिंतन करते हैं कि भी हम कितना भक्त बने। डिस्करेज नहीं होना चाहिए, लेकिन एनालिसिस करते रहना चाहिए हम कितना हमारा टेम्परेचर डाउन हुआ है। अपनी इंद्रिय तृप्ति जो में बाधा आती है तो मैं कितना दूसरों को दुख देने में शर्म नहीं करता, संकोच नहीं करता। ये मेरी बात समझ में आई? जहां मेरी इंद्रिय तृप्ति में थोड़ी सी भी बाधा पड़ गई तो मैं कितना, मुझे संकोच, किसी को संकोच नहीं होता कि मैं दूसरे को कष्ट दे रहा हूं। तो ये तो कर्मी की मानसिकता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हरिदास ठाकुर जी एक गुफा में रहते थे और उसमें बहुत विषैला सर्प था, तो उनसे मिलने के लिए बहुत सारे भक्त लोग आते थे। तो इतना विषैला था कि उससे वो पूरी हवा जो है विषाक्त हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा है, आप छोड़ दीजिए, कुछ करना चाहिए इसको, सांप को मारना चाहिए, ऐसा वैसा। कहते ठीक है, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। अगर हल्ला हो जाए कि इस रूम में सांप है, सांप 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 सांप, उसी से वो सांप निकला, तो अभी सांप निकला, ऐसे चिंता, बड़े परेशान हो जाएंगे हम लोग, बहुत घबरा जाएंगे। कहते मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल तक अरे सांप नहीं जाता है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। कितना देखिए उदार चित्त है। अगले दिन चुपचाप वह सांप चला गया। देखिए हम भले स्तर पे नहीं है, बार बार श्रवण के द्वारा हमारे हृदय में स्प्रिया होती है कि मैं इस प्रकार से शुद्ध सत्य में आऊं, भगवान कृपा करो, ये रजोगुण काटिए, मैं आपकी भक्ति ठीक से कर सकूं, मुझे योग्य बनाइए, मैं आपकी सेवा कर सकूं, प्रेम से सेवा कर सकूं, यह सुनने का लाभ होता है। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। अब समझ में आ गया कि हानिप्रद क्यों होता है? क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है। भगवान के भक्त किसी को हानि क्यों नहीं देता? क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति चाहता ही नहीं है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है वह दुख देगा ही देगा ही देगा ही। उसका नाम आपका बेटा हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। अगर वह इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है तो वह दुख देगा। ये बात सिद्धांत पकड़ लीजिए। और जितना हम इंद्रिय तृप्ति की भावना से दूर हैं उतना ही दूसरों को हम कष्ट नहीं देंगे। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। कभी कभी तो तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, अभी दे बताता हूं तुमको, ऐसा बात भक्त लोग भी कभी कभी कर लेते। तो मतलब इच्छा है ना इस सुख को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रणाम क्यों करे। बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी भावना। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम तो इस जगत के हैं ही नहीं, तुम्हारा दुश्मन कौन है? कोई भी दुश्मन नहीं है। इंडोनेशिया के किसी व्यक्ति से आपकी दुश्मनी है? अमेरिका के किसी व्यक्ति से? क्या मतलब है? मिले नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं, क्या दुश्मनी? लेकिन यहां देखिए छोटी छोटी बात पे, ट्रेन की सीट पे हम लोग झगड़ा कर लेते हैं। तो यह सब जो है स्टैंडर्ड है। भक्त ना तो मूर्ख होता है ना रजोगुणी। ना तो मूर्ख होता है मतलब ऐसा नहीं कि तमोगुणी या कुछ करना नहीं है, सोता रहे, और ना रजोगुणी कि भाई बहुत जगत में महान व्यक्ति बनना, यह इस प्रयास में नहीं रहता। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। इस पे तो कुछ बोलना ही कठिन होगा। प्रभुपाद जी बहुत कठोर बातें बोल रहे हैं, लेकिन देखिए भक्त को मूर्ख नहीं रहना चाहिए। शास्त्र श्रवण करके अपना विवेक, अपनी बुद्धि को डेवलप करना चाहिए। कभी कभी हम गलती करते हैं, बहुत बार गलती करते हैं, लेकिन जब हम श्रवण किए रहते हैं तो हमको मालूम चलता है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है। हरि नाम जप के साथ साथ हम श्रवण करते रहते हैं ना, तो हम जब कुछ गलत करते हैं तो भगवान जरूर बोलेंगे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब देखिएगा हृदय में आप लोग को होता भी होगा, कुछ गलती कर रहे हैं तो भगवान बोल लेते नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रभु जी ने वैसे बोला था, ये सही ठीक नहीं। तो इस प्रकार से मदद करते हैं। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। ये श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है उसमें भगवान के सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें कोई भी गुण नहीं है। क्यों गुण नहीं है? वो तो बहुत बुद्धिमान है, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं ना। वो तभी तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी इंद्रिय तृप्ति में कहीं बाधा नहीं दे रहे। जैसे कि देख लीजिए, हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली था, बहुत सुंदर था, सुंदर भी था, सींग नहीं थे उसके। कभी कभी हम सोचते हैं असुर मतलब उसके कान में थोड़ा सर में सींग होगा, ऐसा नहीं है। खाली उसकी भावना विपरीत होती है भगवान की, भगवान के विरुद्ध चलूंगा। बाकी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं असुर भी। तो असुर जो है, असुर भी था, बहुत सुंदर था, तीन लोगों का राजा था और अपने बेटे प्रहलाद से प्रेम भी करता था। ये बात पता है कि नहीं? बहुत प्रेम करता था, बस एक दिक्कत होगी, लड़का थोड़ा गड़बड़ कर दिया उसने, लड़के ने, कि वह भगवान का भक्त हो गया। जहां उसकी थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति हो बाधा आई तो बच्चे को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। तो ये स्थिति है। तो इस प्रकार से अभक्तों में कोई गुण नहीं होता वास्तविक रूप से। क्यों? वो अपने पूर्व में रजगुण तमगुण के कारण कुछ गुण है भी, तो वह जरा सा भी कुछ परेशानी आएगी उस गुण को तुरंत त्याग देते हैं, कोई दया इत्यादि कुछ नहीं होती। और भगवान का भक्त के पास जो भगवान की भक्ति के द्वारा गुण होता है, प्राप्त हो जाता है, तो वह किसी भी कोई भी भौतिक अवस्था हो जाए उससे वह गुण छूटता नहीं। जैसे सहिष्णुता का, ऐसा ही नहीं कि खाली ठंडी गर्मी सहन कर रहा है। देखिए ना हरिदास ठाकुर जी कितना उनको कष्ट आया, फिर भी वे भगवान मतलब कोई प्रतिरोध नहीं आया उनका। समझ रहे ना? हरिदास ठाकुर हैं या जीसस क्राइस्ट हैं या प्रहलाद महाराज हैं, तो प्रत्यक्ष उदाहरण के, या अमरीश महाराज हैं, जान में भी आ गया फिर भी दुर्वासा मुनि के प्रति कोई उन्होंने गलत बर्ताव नहीं किया। गलत बर्ताव क्या, गलत सोचा भी नहीं, बल्कि ये सोच रहे थे कि मेरी वजह से इनको इतना दुख भोगना पड़ रहा। तो ये सब भक्तों का गुण है और ये सब गुण भगवान से ही आता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करते रहते हैं। ये भी समझना चाहिए कि जब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो साक्षात भगवान का भी संग प्राप्त हो रहा है। तो इसके द्वारा भगवान के गुण धीरे धीरे करके हमारे पास आने लगते हैं और वो प्रकाशित होने लगते हैं। मैं समझता हूँ आज हम इतना रोक देते हैं, काफी लंबा क्लास हुआ, उसके हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद भगवान आरती की व्यवस्था है या पे आज नहीं है? ठीक है, तैयार करना पड़ेगा या पहले से? आप इसको रोक दीजिएगा, रिकॉर्डिंग करो। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।